ज्यादा खेलो मुझे लग जाएगा।
अली जरा आहिस्ता। अली मेरे बेटा आहिस्ता, वो तुम्हारी छोटी बहन है।
सलाम अलैकुम बाबा।
सलाम अलैकुम चाचा जान। सलाम अलैकुम
चाचा जान।
सलाम अलैकुम। क्या तुम अभी तक गई नहीं? तुम्हारी माँ लेने नहीं अभी तक तुम्हें?
दादा जान ने अम्मी को फोन करके इजाजत ले ली कि मैं रात यहाँ रुक जाऊँ।
बहुत अच्छी बात है, रात में रहोगी तो सुबह जाकर मैं हलीम ले आऊंगा, साथ में मिलकर खाएंगे।
हमें कल सुबह जश्न में जाना है।
अली क्या मसला है तुम्हारा? तुम्हें जो काम भी करना होता है पहले करते हो, फिर बाद में मजलूम बनते हो ताकि तुम पर रहम खा सके, हैं? कैसा जश्न बेटा?
हाजिया साहिबा के घर।
कौन सी हाजिया साहिबा है जो अपने लिए जश्न मना रही हैं?
मलिया खाला, चाची मरियम भी आएंगी।
तुम्हारी चाची मरियम कहाँ आएंगी?
जश्न में, वहाँ काम करती है ना, आपको मालूम नहीं था चाचा जान?
क्यों नहीं बेटी मालूम था मुझे।
उसे जो आसाबी शॉक लगा है उसकी वजह से वो पैर भी हिलाने से आजिज हो गई है। डॉक्टर ने उम्मीद दिलाई है कि ये मसला आरजी हो सकता है, लेकिन अब देखना है कि क्या होता है।
मुझे उसे देखने दीजिए, हम एक दूसरे को चाहते हैं।
मैं जानता हूं,
शायद किसी तरह से मदद कर सकूं।
इस्माइल बेटे,
देखिए वसुख साहब, आप मुझसे नाराज हैं ठीक है, लेकिन मुझे एक और मौका दे दें तराना की खातिर।
मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं शुकुफा से भी बात कर लूंगा, लेकिन क्या फायदा? तराना तुम्हें देखना नहीं चाहती, वो अपने पलंग से भी उतर नहीं सकती और नहीं अपने काम अंजाम दे सकती है। उसे भूल जाओ बेटा, उसे टाइम दो। तराना तुम्हारे सामने कमजोर और बीमार दिखाई नहीं देना चाहती।
समीरा, तुमने मलिया साहिबा से बात की? उन्होंने क्या कहा?
कुछ नहीं।
कुछ नहीं बस?
उन्होंने पहले तो मेरी बातें सुनी और उसके बाद कहा कि मुझे साहब से बहुत नाराज है, क्योंकि उन्होंने सब बातें उनसे छुपाई हैं।
हमारे बारे में?
नहीं, उन्होंने कहा कि वो हमसे नाराज नहीं है।
ठीक है, खुदा का शुक्र है।
लेकिन हमें जल्द अज जल्द घर बदलना होगा।
क्यों?
क्योंकि जब भी वो हमें देखेंगी उन्हें उनसे छुपाई हुई बातें याद आ जाएंगी।
अच्छा जाओ जा कह दो कि हम कसूरवार हैं।
जी नहीं, लेकिन मैं हर रोज मलिहा साहिबा की संगीन नजरों से नजरें नहीं मिलाना चाहती।
अच्छा तो क्या करें?
देखो कुछ महीनों बाद हमारा बच्चा आ जाएगा, उसके बाद हम लोग घर नहीं बदल सकते हैं। यही बेहतर होगा कि यहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाए ताकि हम भी पश्चिमान न हो और मलिया साहिबा को भी तकलीफ ना दें।
सब कुछ ठीक है ना? मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो मैं खुदा का वासा मेहमान की पज़ीराई पर पूरा ध्यान देगा।
सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? तशरीफ लाइए। ठीक तो है ना?
सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
खुश आमदीद।
हमेशा की तरह ठीक वक्त पर आई हैं। हाजी साहिबा, लुत्फी साहिबा अपनी खवातीन साथी के साथ तशरीफ रखती हैं।
लुत्फी
मिलना चाहती हैं, वही खातून जिनके बारे में मैंने बताया था म्युनिसिपल काउंसिल की रुकन है, वो आपसे मिलने की मुश्ताक
है। आज़र दे उनको।
चले
बहुत
शुक्रिया। ये सब शमसियान साहिबा और कमेटी की रुकन खवातीन की जहमत है।
अरे नहीं नहीं, आपका जिक्र तो हर जगह रहता है और आपकी वजह से ही बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी हुई मुझे कि आपसे मिली यहाँ।
ऐसी बात नहीं भाई, अगर कुछ है तो वो लुत्फ खुदा है।
तशरीफ लाएं प्लीज, तशरीफ लाएं।
मरियम आप कैसी हैं?
ठीक हूं।
खुश आमदीद कहते हैं आपको। हमारे स्टॉल पर भी चीजों को देखिए।
मटेरियल भी बहुत अच्छा है, देखिए सिलाई भी अच्छी
है, बहुत अच्छा है,
सब बहुत अच्छा है।
चाची जान, चाचा है।
माफ कीजिएगा मैं अभी आती हूँ।
अच्छा ठीक।
अस्सलाम वालेकुम अलिया खाला।
यहाँ क्यों आए हो तुम?
तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तो मेरी बेइज्जती करवा दोगी, मुझे काम से निकाल देंगे।
कौन सी इज्जत, कौन सा काम, मुझे बताओ तो सही, मैं भी देखूँ यहाँ क्या हो रहा है आखिर।
सलाम वालेकुम।
हमारी भाभी को तो बहका दिया, मेरी बीवी के बारे है ना?
फिर क्या हुआ भाई साहब?
क्या हुआ, मेरी बीवी यहाँ क्या कर रही है आखिर?
यहाँ वो मेहनत करती है ताकि अपने लिए अपने बच्चों के लिए हलाल रोटी कमा सके।
तुम कौन हो?
मैं यहाँ की मैनेजर हूँ।
तुम्हें मैनेजर किसने बनाया? क्या मैं मर गया हूँ?
जब घर में थी तभी काम ही कर रही थी, उस वक्त तो तुमने मुझे रोका नहीं।
जब तुम घर में थी और काम करती थी तो मुझे मालूम रहता था तुम कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, किसके साथ आती हो, मैं सबको पहचानता था। इस नुमाइश की तरह नहीं कि इन तमाम अजनबी लोगों में क्या कर रही है, मजाक और मजाक किस वजह से?
छोटी बच्ची थोड़ी हूँ जो तुम्हारी हर बात मान लूं मैं।
तुम्हारा शौहर हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए तुम कहाँ काम करती हो।
जनाब अली, ये जगह वो है कि जहाँ बहुत सारी औरतें काम कर रही हैं और आपकी बीवी के लिए कोई मुश्किल यहाँ पेश नहीं आएगी। दूसरी बात ये कि अगर आप इनके शौहर हैं तो इनकी जिंदगी के तमाम अखराजात पूरे करें।
मैं ये जानना चाहता कि आपको हमारी जिंदगी खराब करके क्या मिलता है आखिर? किस वजह से लोगों को बहादुर बना रही है इतना?
मैं इनके शरी हुकूक और फराइज इन्हें बता रही हूँ बस।
जी नहीं, ये बस आखिरी स्टॉप है। मैं खवातीन के दरियाना आज सब कुछ सत्यानाश कर दूंगा। आप लोग जानती हैं ये खातून मेंबर पर क्या कहती है, बीवियों को उनके शहरों के खिलाफ उकसाती है। भाई मैं अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मैंने इस किस्से की जड़ों का पता लगाने की कोशिश की और आज यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ पर नुमाइश में ये औरत।
बस करें बहराम साहब, ये क्या बातें कर रहे हैं आप?
हक बात कर रहा हूँ।
यहाँ हमारे पास मेहमान आए हुए हैं, यहाँ पर बहुत सी खवातीन हजार आरजुओं के साथ अपना स्टॉल लगा रही हैं। अब आप तशरीफ ले जाएं, मैं खुद आपसे टेलीफोन पर बात कर लूंगी।
जी नहीं, मैंने यहाँ इसलिए खत्म रखा है कि आपकी इस धोखेबाजी और फरेब को खत्म कर दूं। आज कुछ सादा दिल लोगों के सामने तुम्हारी हकीकत ले आऊं जिन्होंने आपके जाहिर से फरेब खाया है।
शर्म करें, इन दो बच्चों की वजह से आपसे कुछ नहीं कह रही हूं। बस करें अब।
मेरी बातें खत्म नहीं होने वाली, मैं अदालत ले जाऊंगा आप सबको। तुमने कुछ गरीब अफराद को अपने अतराफ जमा कर रखा है, तुम इनकी मदद करती हो। जी नहीं हाजिया साहिबा, इस मरतबा तो आपके पर काट कर ही रहूंगा।
बहराम साहब, यहाँ पर इस तरह की बातें करना मुनासिब नहीं है। तुम्हें उस वक्त से परेशानी होने लगी जब से बहमन साहब का इंतकाल हुआ। अगर तुमने अपनी भाभी, उनके बच्चों और अपनी बीवी की जरूरतों को सही तरीके से पूरा किया होता तो ये ना होता।
मैं एक बिल्कुल गलत आदमी हूँ, तुमसे मतलब?
हाजिया साहब, अब हमें जाना चाहिए। ठीक है, खुदा हाफिज़।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आप चंद मिनट तशरीफ रखे, मैं अभी आती हूँ। तुम्हारे शोर मचाने से तुम्हारे भाई तो जिंदा नहीं हो जाएंगे। मेरे भाई हो जाएंगे?
क्या भाई भाई की रट लगा रखी है, हमारी जिंदगी से आपका क्या मतलब?
मैं जानती हूँ तुम्हारी मुश्किल क्या है, ये ना सोचना कि अपने भाई का बदला दूसरों से ले सकते हो।
या फातिमा जहरा, मलिया साहिबा,
कहना क्या चाहती हैं आप?
खुद अपने आप से सच्चे रहो मेरे भाई। जो गुनाह तुमने किया है उसकी वजह से दूसरों को तंग ना करो। तुम ही अपने भाई की मौत के जिम्मेदार हो। ये शोरगुल भी इसी वजह से है।
अली क्या कर रहे हो? रुको,
छोड़ो मुझे, जाने दे मुझे, जाने दीजिए, जाने दे मुझे,
रुको अली, क्या कर रहे हो?
छोड़ दे, छोड़ दे मुझे, जाने दे मुझे।
सारा जाओ, अबू जान के पास जाओ, दरवाजा पे बंद कर लो।
आपने मुझसे झूठ कहा है, आप सब ने मुझसे झूठ कहा है।
मैंने जो भी किया है तुम्हारे वालिद की खातिर किया है। वो भाई थे मेरे, मेरे अपने थे।
क्या हुआ अली?
दादा ने आपको भी पता था?
किस बारे में? बच्चे का हाथ छोड़ो। मरियम, क्या बात है, ये बच्चे क्या कह रहे हैं?
कुछ नहीं अबू जान, आप परेशान ना हो।
बहराम, ये इस घर में क्या हो रहा है?
मैं सिर्फ उनकी मदद करना चाहता था। अली की कसम खाकर कहता हूँ, मैं सिर्फ मदद करना चाहता था।
तुम किसकी मदद करना चाहते थे? पूरी बात क्यों नहीं बता रहे हो?
मैं भी दुख खा गया। तुम क्यों कुछ नहीं कहती हो? तुम्हें तो घर की बातें बहुत अच्छी तरह से बतानी आती है ना, है ना? अब तुम्हारी जबान क्यों बंद है? बताओ, क्यों गूंगी हो गई हो? क्या हकीकत है? बहुत शुक्रिया, तुमने इन दोनों बच्चों के सामने बड़ी इज्जत की मेरी।
कोई बताए तो सही, क्या बात है, क्या मुसीबत आई है?
मेरा पैसा भी लेकर चला गया बाबा जान, इसके साथ मेरी इज्जत भी गई। मैं बहमन से आंख मिलाने की सकत नहीं रखता था। मैं किसी भी तरह से बहमन का पैसा वापस लाना चाहता था। मैं उस आदमी को ढूंढना चाहता था ताकि उससे पैसा वापस ले सकूं। बहमन पुलिस में रिपोर्ट करना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर पुलिस बीच में आ जाएगी तो हमें पैसा नहीं मिलेगा। काश मैं गूंगा हो गया होता और टेलीफोन पर उनसे इतनी बहस न की होती। काश मैं उनकी जगह मर गया होता।
क्या हुआ दादा जान आपको? क्या हुआ?
इन दोनों बच्चों की कसम खाकर कहता हूँ, बहमन की मौत के बाद मैंने एक दिन भी जिंदगी नहीं गुजारी। देखे बाबा, मैंने अली के लिए बैंक अकाउंट खोला है। मैंने ये अहद किया है कि अली के 18 बरस पूरे होने से पहले इसे बहमन का सारा पैसा अदा कर दूंगा। देखे इसमें कितना डिपॉजिट है।
अपने भाई के खून का पैसा मुझे दिखा रहे हो, इस पर तुम्हें फख्र नहीं है बेवफा?
क्या होगी बाबा आपको?
एक ग्लास पानी लेकर आओ, मैं भी दवा लेकर आऊं।
क्या होगी बाबा आपको? बाबा जल्दी करो।
अरे सुन करम, तूने तो कहा था शादी करेगा तो मालदार हो जाएगा और मेरे इस गधे को भी काम पे लगा देगा।
अरे तुम्हारे इस गधे ने इतना इंतजार किया है, थोड़ा और भी इंतजार कर ले।
ये भी बड़ा खुश है, वो तो तुझे जानते भी नहीं। वो तुझे दुकान देंगे और तू मालदार हो जाएगा।
देखो मेरे नाम हो जाएंगे, तुम देख लेना। इन ही दिनों शहर में एक खबर गर्दिश करने लगेगी।
काय की खबर?
तेहरान का शान हाईवे पर एक गाड़ी के एक्सीडेंट की खबर। बीवी मर गई और शौहर बच गया। तुम इंसान की आकिबत देख रही हो?
सुन कह रहा हूँ, खुदा तुझे अकल दे, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है तू।
मुझे को गाड़ी पलटना आता है। आहिस्ता जरा,
रुक रुक, मेरा नंबर रुक जा, सब्र कर, रुक रुक रे।
आज रात
अगर अल्लाह ने चाहा तो
नहीं तो मेरी बाजी थी।
अरे उसे ये तो बता दे कि उसके बच्चे को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। अगर वो उस दुनिया में चली गई और देखा बच्चा नहीं है तो फिर उसे परेशानी ना हो।
जी हाँ कह दूंगा।
मैं समझता हूँ कि अभी आधे घंटे में आ जाएंगे, तुम तैयार हो?
बस अल्लाह करे मलिहा साहिबा ये का एक ना आ जाए।
हाँ ना आए तो अच्छा है।
हमने कैसे कैसे प्रोग्राम्स बनाए थे।
अगर कुछ महीने और रहते तो यहाँ से नहीं जाते।
एक दिन हाजिया साहिबा कह रही थी कि इंसानों के लिए दुनिया चैन की जगह नहीं है। मैं आज इन महीनों के बारे में सोच रही थी, यानी जब से मुर्तजा साहब का एक्सीडेंट हुआ है और अब तक। इस घर से चैन और सुकून उठ गया है। मुर्तजा साहब की मौत आम मौतों की तरह नहीं है जिसमें हजारों लोग चले जाते हैं। उनके मरने से खासा तलातम बरपा हुआ है, सब कुछ इधर उधर कर दिया। नहीं मालूम वो किस हाल में है, लेकिन इसका नतीजा हमारे लिए हर रोज एक नई मुश्किल का सबब है।
हर इंसान को इस ऊंच नीच में अपना चैन और सुकून ढूंढना होता है। तुम भी तेजी दिखाओ इससे पहले कि मेरा नजरिया बदल जाए।
खुदाहाफिज़ी किए बगैर जाना हमेशा बेवफाई की दलील नहीं होता। इस मर्तबा की तरह जैसे हमको शर्म से जाना पड़ा, आपने हमारे हक़ में माँ का किरदार अदा किया है। आप हमारी इस बात पर यकीन करें कि आपके घर में रहने से हमें जो शर्म महसूस हो रही थी हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अलबत्ता ये संगीनी जिस कदर भी ज़्यादा हो आपकी बुजुर्गवारी और मेहरबानी से ज़्यादा नहीं हो सकती। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम जवान हैं और हमारी कुव्वत बर्दाश्त कम है। सलाम करने के लिए बहुत जल्द हाजिर होंगे।
अली क्या हुआ बेटा? अस्सलाम वालेकुम।
अली कहाँ है?
अली घर आ गया।
तुम्हें क्या मालूम है कि उसे ढूंढने के लिए मैंने किस कदर गलियों में चक्कर लगाए हैं?
क्यों, क्या हुआ है?
तुम्हें नहीं पता और अली ने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया है।
मरियम मुझे कुछ नहीं मालूम।
फरूख तुमने सब कुछ खराब कर दिया, सब कुछ खराब कर दिया। मैंने तुम पर एतमाद किया था।
मैंने खराब किया? मैंने क्या किया है?
अब और क्या कर सकती थी? तुमने सारी बात नदाफ साहिबा को बता दिया, उन्होंने भी सारा बहराम को बता दिया अली और सारा के सामने। बच्चों को नहीं मालूम होना चाहिए था, सब मालूम हो गया। फरूख मैंने तुमसे कहा था ये बातें तुम्हारे पास अमानत है। क्या नहीं कहा था कि नकल करोगी तो अमानत में खयानत हो जाएगी? नहीं कहा था फरूख?
तुम अगर समझ रही हो कि मुंह बना लोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरियम खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम हाजिया साहिबा ने काम क्यों किया। जब अली ने उनकी दुकान का शीशा तोड़ दिया था तो मैंने अली को सब कुछ बता देना चाहती थी, लेकिन हाजिया साहिबा ने मना कर दिया।
तो तुम पहले से ही जाकर वो सारी बातें बर्मला करना चाहती थी?
हाँ, उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तुम भी मेरी जगह होती तो यही करती। मैंने सोचा कि बहराम ने उसे उकसाया है।
अच्छा,
मुझे वाकई नहीं मालूम, मुझे यकीन नहीं आता। حاجہ صاحبہ سے بہت بعید ہے. انہوں نے مجھ سے کافی لمبی چوڑی باتیں کی. مجھے اطمینان دلایا کہ یہ باتیں کسی سے نہ کرنا, ان کے بچے اپنے چچا کی طرف سے بددل ہو جائیں گے.
یہ وہ موقع تھا جب ان کی آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنے والی. فروغ جان,
امی چاول کا پانی خشک ہو گیا, کیا کروں میں؟
آنچ کم کر دو اور چاول دم کر دو, اس میں کون سی پوچھنے والی بات ہے بیٹا.
بیٹا سارا کہاں ہے؟
سو رہی ہے.
مریم, جب بہرام نے سنا ہوگا کہ تم نے یہ باتیں مجھے بتائی ہیں تو تم سے بہت جھگڑا کیا ہوگا. اب تم کیا کرو گی؟
پتا نہیں, مجھے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. بہرام گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے, ابو جان بھی بیمار ہو گئے ہیں. اس آخری ہارٹ اٹیک کے بعد وہ ایک قدم بھی نہیں چل پا رہے بےچارے میرے ابو جان.
میں شرمندہ ہوں بہت, بابا کا بوجھ بھی تمہارے کاندھوں پر آ گیا.
کوئی بات نہیں, بہرام نے مجھے جب چھوڑ دیا نا تو آ کر ان سب کو سنبھال لینا.
مریم اس طرح مجھ سے بات نہ کرو, مجھے کیا معلوم انہوں نے قدم کیوں اٹھایا.
تمہیں تو فائدہ ہی ہوا, علی جب واپس آ گیا.
اگر میں چاہتی کہ وہ گھر آ جائے تو میں خود جا کر اسے سب کچھ بتا دیتی, ایسے حالات نہ پیش آتے.
سب لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, نقصان مجھے اٹھانا پڑ رہا ہے. مریم تیری زبان کٹ جائے جو بے موقع منہ کھول دیتی ہے. میں کتنی بے وقوف ہوں, میں نے تمہیں یہ باتیں بتائی ہی کیوں؟ ہاں
دیکھو تم بات کا پتنگڑ بنا رہی ہو.
السلام علیکم ملک صاحبہ.
علیکم السلام حاجیہ صاحبہ.
یہ صبح سویرے سویرے کیا کر رہی ہیں آپ؟
مجھے معاف کریں, میں نے آپ کو جگا دیا, چھت کا پلاسٹر گر گیا.
یہ کیا ہوا ہے؟ آپ کا دشمن شرمندہ ہو. میں جاگ رہی تھی بھائی, آج کے جلسے کے لیے نوٹس بنا رہی تھی. ٹھیک ہو بیٹی؟ اچھا کیا آگے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میری بھانجی ہیں.
خوش رہو بیٹا, ملکی صاحبہ نے آپ کو بہت زحمت میں ڈال دیا.
کوئی بات نہیں,
ہماری قسمت دیکھیے, آج کلاس رکھا تھا تو چھت گر گئی.
میں نے آپ کو میسج بھیجا تھا, شاید آپ نے دیکھا نہیں.
نہیں بھائی,
آج کی کلاس کینسل ہو گئی ہے. اکثر خواتین نے کہا کہ وہ آج نہیں آ سکتی.
نہیں آ سکتی؟
جی ہاں. میں جا کر دیکھتی ہوں کون ہے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
یہاں ہیں, میں ان کے گھر کی گھنٹی بجا بجا کر تھک گئی, کسی سے جواب نہیں ملا.
ہاں بیٹی یہیں پر ہے, حسینیہ میں بیٹھی ہیں, اندر آؤ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام فروخ بیٹی, خوش آمدید.
آپ سے بہت ناراض ہوں.
نرگس حاجیہ صاحبہ اگر جلدی دے تو ہم چلتے ہیں.
خدا حافظ ملکی صاحبہ, زحمت ہوئی.
خدا حافظ.
خدا حافظ بیٹی, خدا حافظ. چلو اوپر چلیں.
نہیں اچھا ہے,
تم اس وقت غصے میں ہو, کچھ دیر رک جاؤ, جب تمہیں سکون مل جائے تو جو چاہو مجھے کہہ دینا.
مجھے دوبارہ نصیحت کر رہی ہیں؟
تم کیا کہنا چاہتی ہو؟
آپ کو یاد نہیں, اسی گھر میں مجھے روک کر کہا تھا کہ علی کو کچھ نہ بتانا.
ہاں مجھے یاد ہے, علی کو یہ سارے واقعات معلوم نہیں ہونے چاہیے تھے.
تو پھر کیا ہوا؟ آپ کی عزت کی بات آ گئی تو آپ میری زندگی کے مسائل بھول گئی؟
میری عزت کا سوال نہیں تھا بیٹی, کسی ایک کو شخص کا مقابلہ تو کرنا تھا نا.
جب اس نے شور مچایا تو آپ اس نتیجے پر پہنچی؟
اس کا تعلق مجھ سے یا خیراتی نمائش کے کسی مہمان سے نہیں ہے, حدیث میں آیا ہے. آ حضرت فرماتے ہیں کہ میری امت میں وہ بدترین انسان ہے جس کے شر کے ڈر سے لوگ اس کا احترام کریں. ہمیں بہرام صاحب سے نہیں ڈرنا چاہیے تھا.
اسی وجہ سے وہ ساری باتیں اور وہ ساری امانتیں جو میں نے آپ کے سامنے برملا کہی تھی ملیحہ صاحبہ, کتنا اچھا ہو, کتنا اچھا ہو اگر آپ کبھی کبھی اپنے نوٹس پر خود بھی نگاہ کر لیا کریں. آپ کو یاد ہوگا آپ نے ایک حدیث سنائی تھی امانت میں خیانت کرنے کے بارے میں, لوگوں کے بارے میں, بخشش کے بارے میں, صبر, माफ करने के बारे में। आपने कहा था कि अगर गुस्सा आ जाए तो बैठ जाए, क्योंकि सब्र गुस्से की दावा है। ये हदीस आपको याद नहीं है? आपने कहा था कि जब दो इंसान लड़ाई करें तो दो फरिश्ते आसमान से उतर आते हैं, और जिसने बदकलामी या गालम गलोच की है उसे कहते हैं कि तुम ही इन बातों के मुस्तहिक हो, अपने आमाल का नतीजा बहुत जल्द देखोगे। और जो आदमी बर्दबारी से काम लेता है तो उसे कहते हैं कि सब्र करो। लेकिन अगर वो बर्दबारी ना करे और अपने मद्दे मुकाबल का जवाब देने लगे तो ये दोनों फरिश्ते आसमान पर चले जाते हैं और अकेला छोड़ देते हैं। इस रवायत को भूल गई आपको याद नहीं रही? मैं सोचती हूँ कि आपकी इज्जत आपके लिए इतनी ज्यादा अहमियत रखती है कि आपने जो कुछ पढ़ा लिखा वो आपने दूसरों को तो सिखा दिया लेकिन खुद भूल गई। जानती है आपके कलाम का नतीजा क्या हुआ? बहराम साहब घर छोड़कर चले गए, अली के दादा अस्पताल में भर्ती हैं। अली बेचारा एक कोने में बैठकर पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है और बाहर नहीं जाता। आपके एक जुमले ने कैसा जहन्नम बना दिया है एक घराने को। बेचारे बहमन के पास वक्त नहीं था कि वो मस्जिद में जाकर तकरीरें सुने। वो हमेशा मुझसे और बच्चों से कहते थे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बख्शिश जन्नत में एक दरख्त है जिसकी शाखें जमीन पर फैली हुई है, जिसने भी इन शाखों को पकड़ लिया वो जन्नत में पहुंच जाएगा। मलिहा साहिबा, अगर इंसान हकीकी तौर पर सिर्फ इस जुमले पर अमल करे तो ये एक जुमला हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर है। बहराम साहब कहाँ हैं?
उस तरफ।
जी सलामुलेकुम।
अलैकुम सलाम। बहमन को काम से निकाल दिया गया था।
क्या?
उसे काम से निकाल दिया गया था। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था इस बात को। हर रोज सुबह वो काम के बहाने तैयार होकर घर से निकलते थे, काम की तलाश में जाते थे।
उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया?
तुम तो जानती हो उनकी गैरत माने हुए नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी उनके लिए परेशान हो। सिर्फ तुम्हारी फिक्र करते थे वो। मैं भी चाहता था मदद करना उनकी। गलती की मैंने और उनसे कहा कि उस आदमी के पार्टनर बन जाए। जब वो आदमी पैसे लूट कर चला गया तो मुझे ही जिम्मेदार ठहराया जाने लगा। उस रात मैंने उन्हें बहुत फोन किया लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुबह में तुमने फोन किया, मैंने सोचा शायद बहमन है, लेकिन तुमने बताया कि वो तो हमेशा की नींद सो गए। भाभी आपको कसम है बहमन की कोई ऐसा काम करे जिससे अली मुझसे बात करने लगे। मैं नहीं चाहता कि बहमन की यादगार मुझसे नाराज रहे।
تمہارا فون بج رہا ہے.
معلوم ہے.
اٹھو بیٹی اٹھو, ساتھ میں تھوڑی چہل قدمی کرتے ہیں, تمہارے لیے بہت اچھا. چلو
ٹھیک ہے امی. میں خود آ رہی ہوں امی. بالکل ہمت نہیں ہے, بالکل رہنے دیں بعد میں. امی مجھ میں ہمت نہیں ہے. ہاں
ٹھیک ہے. یہ لڑکا تو ابھی بھی یہاں پر ہے.
تم اس کی جگہ ہوتی تو چھوڑ کر چلی جاتی.
وہ ہماری بیٹی سے کوئی نسبت نہیں رکھتا.
نسبت تو نہیں رکھتا لیکن اس کے لیے پیار و محبت تو رکھتا ہے.
اس کے اسی پیار اور محبت سے تو ہم ان مصیبتوں میں گھر گئے ہیں.
وہ لڑکا جو وہاں کھڑا ہے وہ ترانہ ہی کا انتخاب ہے. تم ترانہ کی حوصلہ افزائی کرو.
اور آپ نے بھی تو اس انتخاب کی دل کھول کر حمایت کی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ خود ہی جائیں گے اسے کہیں گے یہاں سے دفع ہو جانے کے لیے یا میں جاؤں؟
السلام علیکم.
آپ رات کے اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟
یقین مانیے میں آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں چاہتا تھا, صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی طبیعت کیسی ہے.
جب وہ آپ کے فون کا جواب نہیں دے رہی ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی نہیں چاہتی کہ آپ اس کے خیریت سے آگاہ ہوں.
ان کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟
اگر آپ اس کا پیچھا چھوڑ دیں تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. خدا حافظ.
کیا وہ واقعی مجھے نہیں دیکھنا چاہتی؟
جی ہاں, آپ سے نہیں ملنا چاہتی ہیں.
کیا ہوا کرم, پریشان نظر آتے ہو.
حوصلہ نہیں ہے کسی چیز کا.
تمہاری حالت تو سدھر گئی تھی, یہ کیا ہو گیا تمہیں پھر؟
کچھ نہیں, میں آج رات تہران جا رہا ہوں. اس بوڑھیا اور ناہید پر نظر رکھنا.
بھائی کرم ہمیں مت بھول جانا, ایسا نہ ہو کہ دکھائی نہ دو.
تم مجھے دکان کا دروازہ تو کھولنے دو, پہلے دکان پر بیٹھنے تو دو, اس وقت آنا اور شریک ہونے کی بات کرنا.
میں تو تمہارا دوست ہوں, بس اتنا کہنا چاہتا تھا کہ ہمیں نہ بھولنا, بس یہی.
بس یہی رہ گیا ہے کہ تم میرے مقابل آ جاؤ.
مقابل کیا ہوتا ہے, میں نے تمہاری مشکل حل کی, اب تم میری مشکل حل کرو. دنیا کی رسم یہی ہے نا.
ہاں تم نے کیا کیا؟ صرف ایک گاڑی لا کر دی اور چاہتے کہ سارے عمر تمہارا غلام بن کر رہوں.
مجھے غلام نہیں چاہیے, مرد بنو اور جو وعدہ کیا اس کو پورا کرو.
ارے بھائی ایک چائے دینا. آہا کرم صاحب
ہٹو ہٹو بھائی, میرا موڈ خراب ہے.
ارے کیا ہو گیا اس کا؟
کچھ نہیں, بے وقوف ہے.
ارے ہوا کیا یار؟
کچھ نہیں.
ناہید ناہید
کیا ہے کیا ہے, کیوں تم نے دوبارہ گھر سر پر اٹھایا؟
ناہید کہاں ہے؟ ناہید
کہاں ہونا چاہیے؟
بچے کو لائے,
کل لے آؤں گا, آ جاؤ یہاں.
کل کل کی رٹ لگا رکھی ہے, بس ایک مرتبہ کہہ دو کہ نہیں لاؤں گا, جھوٹ بول رہے ہو.
تم خود چلی چلی جاؤ, صبح دونوں مل کر چلتے ہیں بچہ لینے, ٹھیک ہے؟
اسے کہاں لے جا رہے ہو؟
ہم لوگ تہران جائیں گے, بچہ تہران میں ہے.
کیا کہا؟
کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں, اسے ڈھونڈ نکالا ہے. جاؤ اپنا بیگ تیار کرو.
تم نے پیسے کا کیا کیا؟
پیسے بچے کے لیے دیے ہیں نا.
کس کو دیے؟
تہران میں اس آدمی کے لیے بھیج دیے.
تہران بھیج دیے؟ یہ اس قدر جوا کھیلا کہ سب ختم ہو گیا.
نہیں صاحبہ, لگتا ہے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے.
کیا ہوا نانی جان؟
اس سے پوچھو اس نے پیسے کا کیا کیا.
میں نے کہا نا تہران بھیج دیے.
ہمایوں کی بیوی کہہ رہی تھی کہ ایک ہفتے سے جوا کھیل رہا ہے, مفت میں ہاتھ لگا پیسہ دے.
دیکھو میں کیا کرتا ہوں یہ مجھ سے متعلق ہے، میری بیوی کی نانی اور چغل خوری کرنے والوں سے نہیں۔
یوں کہہ رہا تھا، ایک تھیلی میں پیسہ بھر کر حاتم تائی بنے بیٹھے ہو۔
میرے مرنے تک جاؤ۔ ناہید، اپنا بیگ تیار کرو گی یا اس کی بکواس سنتی رہو گی؟
لڑکوں سے دکان کے لیے پیسے لیے تھے۔ ہاں
کون سی دکان؟
تمہیں اس دکان سے کیا مطلب؟
میری بیوی کی ہے، تم سے کیا مطلب؟
میرے پیسے سے حاتم تائی بنے ہو؟ کون کہتا ہے دکان تمہاری ہے؟ یہ سب مرتضیٰ کے بچے کا ہے۔
اچھا، آپ کیا مرتضیٰ کی رٹ لگا رکھی ہے؟
اسی وجہ سے مجھے خدشہ تھا کہ یہ جھوٹا انسان تمہارا بچہ نہیں لائے گا۔
ہائے ہائے بڑھیا، تم نماز پڑھتی ہو اور ان تومتوں کے ساتھ پولیس رات سے گزرنا چاہتی ہو، یا حضرت عباس؟
ہاں ہاں، نماز تو پڑھتا ہے، خدا تیری نماز تیرے سر پر مارے، ناہید کہیں نہیں جائے گی۔
نانی
تم کیا کہتی ہو، تم سے کیا مطلب؟
اس طرح مجھے اطمینان رہے گا، دروازے پر آنکھیں نہیں جمی رہیں گی۔ چلو اندر جاؤ لڑکی۔
ناہید صاحبہ، اگر میں پشیمان ہو گیا تو پھر تمہیں کچھ نہیں ملنے والا۔
اندر جاؤ، میں تجھ سے کہہ رہی ہوں، دفاع ہو جا تو گدھے۔ میں جانتی ہوں اس کا بچہ مر گیا ہے، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا، دکان بھی نہیں ملے گی۔
تمہیں کیا، جاؤ دفع ہو جاؤ، ہٹو بڑھیا، ہٹو راستے سے، کھولو دروازہ، دروازہ کھولو،
کیا کر رہے ہو،
جلدی کرو،
کھولو، چھوڑو اسے،
ارے آ جاؤ، آ جاؤ،
میرے قریب نہیں آنا،
مرضی سے آؤں گی یا زبردستی لے جاؤں تمہیں؟
میری نانی امی کو کیا کیا تم نے؟
نہیں، مجھے زیادہ غصہ مت دلاؤ، مت دلاؤ مجھے غصہ،
باہر آنا ہے،
ارے تم جا ہے باہر، جاؤ حرام خور، تم دخالت نہیں دو، ہٹ جاؤ راستے سے، تم کیا کہہ رہے ہو بڑھیا، ہٹو ہٹو، تمہاری تو میں ایسی کی تیسی کر دوں گا، تمہیں تو میں قتل کر کے رہوں گا، ارے تم درمیان میں آ کے کیا کر رہے ہو،
مر جاؤ، دفع ہو جاؤ۔
سے ملنا نہیں چاہتی۔
میں کسی سے انتقام لینے کے چکر میں نہیں ہوں۔
اصل بات کہنے سے میں نے خود کو روک لیا، لیکن اب سب کچھ میں کہہ دوں گا۔
رک جاؤ ناہید، میں نے حسد کیا، میں جو خود سوچتی تھی کہ میں ہر حسد سے دور ہوں۔
اپنی تنہائیوں میں اپنے خدا کے ساتھ ہمیشہ میرا ضمیر مجھے کچوکے لگاتا۔
ناہید بے خیالوں میں سیر کر رہی تھی، سمجھ رہی تھی جس کے لیے آنسو بہا رہی ہے وہ زندہ ہے اور واپس آ جائے گا۔
آپ کو کہاں سے پتا چلا؟